ओम शांति। आज के दिवस ये हमारा लास्ट सेशन है और हमारे बीच आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी उपस्थित हैं। हम उनका ये हाथ की ताली से अपने संगठन में अभिनंदन करते हैं। मोहन भाई को तो आप जानते ही होंगे, यूं तो परिचय तो कहूं तो बहुत लंबा है, सारा बीके परिवार है और हमको हमेशा ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा हमारा परिचय कि हम बाबा के बच्चे एक परिवार के हैं। आप वैसे ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं, कई मैगजीन्स और कई आपने एग्जीबिशंस तैयार की, नए नए प्रोग्राम रचते रहते हैं, क्लासेस और बाहर के कार्यक्रम भी आप करते ही हैं और आज आपके बीच इस विषय को स्पष्ट करेंगे क्योंकि योग में मन का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस साधना के मार्ग में अगर हमने मन को जीत लिया, यानी मन को हमने दिशा दे दी, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी विषय को स्पष्ट करेंगे आदरणीय भ्राता मोहन भाई। मन जीते जगत जीत।
ओम शांति। फिर से एक बार हमारे साथ बोले ओ शांति का जो महामंत्र है, ये भी डायरेक्ट मन के साथ ही कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कहते आए हैं, क्या कहते आए हैं, मन को शांति चाहिए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले बाबा ने इस पर क्या कहा था, साकार मुरली रोज सुनते हैं ना सभी, कुछ ही दिन तीन चार दिन पहले ही क्या कहा था कि वास्तव में ये भी कहना ठीक नहीं है, मन को शांति चाहिए। किसको शांति चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में कहते आए हैं मन को शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते रहे हैं कि क्या करें, मन बहुत चंचल है, भटकता रहता है, न चाहते भी इधर उधर चला जाता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में विशेष करके और विश्व की जो भी महानतम संस्कृतियां होके गई हैं, उन सब में मन को विशेष महत्व दिया है। और अल्टीमेटली भारतीय संस्कृति में तो यही कहा है जो आज का विषय है, मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये भी कहा है गीता में, मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो ये मन को हम कैसे जीते हैं? और जहाँ जीत शब्द आता है वहाँ जीवन में खुशी होती है, जीत में उमंग उत्साह होता है, सफलता जब होती है खुशी होती है। हम सभी जीवन में जीतना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा हो। हर एक के क्षेत्र अलग होते हैं और बाबा ने तो हमें इतना बड़ा क्षेत्र दिया है कि मन को जीतने का। और वो मन को क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया, वैसे तो अनेक खजाने हैं हमारे, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का बहुत, फिर भी बाबा ने कौन से खजानों को विशेष महत्व दिया है? कितने खजाने? दो खजाने। अब तो ख्याल आ गया होगा ना, कौन से दो खजाने? समय और संकल्प। संकल्प रूपी खजाना बहुत बड़ा खजाना है और संकल्प जितने हमारे श्रेष्ठ होंगे, जमा होते जाएंगे, तो समय की भी बचत होती जाएगी और संकल्प अगर थोड़े भी व्यर्थ चले गए और ऐसे संकल्प हो गए जो हम नहीं चाहते हैं तो नेचुरली संकल्प तो वेस्ट हुए ही, साथ में और क्या वेस्ट हुआ, समय भी वेस्ट हो गया। इसीलिए समय और संकल्प रूपी खजाने को बाबा ने भी हमें साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला 1961-62 में जब ज्ञान में आए, उसके बाद से लगातार बाबा के साथ साथ काफी रहने का बीच बीच में मौका मिला। जब आए तब तो पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो पूरी हुई और बीच में अलग अलग समय पर आते रहते थे, वो तो एक बात। लेकिन साथ में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए, 18 जनवरी कौन सा साल था, 1969, तो उस समय हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, लेकिन बाबा ने अंत समय जैसे हमें अपने पास बुला लिया और 17 और 18 जनवरी को हम बाबा के साथ ही साथ थे। तो बाबा की जो कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला प्रत्यक्ष में, उसके आधार पर हमने देखा कि किस प्रकार से बाबा की स्थिति थी और हम सभी का भी वही लक्ष्य है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, संपूर्ण स्थिति को, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति को। तो बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना हुई उसी समय ही ये अनुभव किया कि मन वाकई बहुत चंचल है, क्योंकि बाबा तो भक्ति में भी बहुत थे। और जब बाबा ने देखा तो सबसे पहले बाबा ने मन को जीतने का प्रयास किया। कैसे जीता, बाबा ने मन को पत्र लिखा। गौर से सुनिएगा कैसे लिखा ये पत्र। जब बाबा ने लिखा, सिंधी में लिखा था, और हमारे एक वरिष्ठ भाई आनंद किशोर दादा, आप में से कई जानते भी होंगे, उन्होंने वो पत्र हिंदी में ट्रांसलेशन करके हम कुछ पुराने सीनियर भाइयों को दिया था। तो बाबा ने जब ये महसूस किया मन भाग जाता है, हम चाहते हैं, तो बाबा ने दो विशेष पुरुषार्थ किए थे। एक तो आपने को मालूम होगा बाबा ने क्या किया था, आत्मा का। और दूसरा जो ये बाबा ने ना, हमेशा बाबा कहता है, हम बच्चों को होमवर्क दिया पिछले कई साल से बाबा ने, रोज रात्रि को सोने से पहले क्या करो, चार्ट लिखो, लेकिन उसमें भी क्या करो खास, इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। मन बुद्धि संस्कार ये हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, ये स्थूल तो 5 बाहर के हैं ही हैं, लेकिन इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, क्योंकि आत्मा, मैं आत्मा राजा हूँ, और राजा अपने जो मुख्य मुख्य मंत्री और वो होते हैं उनसे सलाह मंत्रणा करता है बीच बीच में। कोई भी बड़ा होता है वो अपने जो और समकक्ष होते हैं उनसे मीटिंग करता है, सलाह करता है। तो बाबा ये बार बार कहते हैं कि मन बुद्धि संस्कार की रोज दरबार लगाओ। तो बाबा ने भी सबसे पहले 1936-37 में क्या किया, पहले तो मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा, गौर से सुनना। हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन फिर भी तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया और मंत्री तू बलशाली हो गया, और तू जहाँ जहाँ कहता रहा मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तू मुझे भटकाता रहा मैं तेरे पीछे पीछे तेरे कहने पर चलता रहा। क्यों, क्योंकि मैं कमजोर हो गया था तू बलशाली हो गया था। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों, क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। तो ऐसा बाबा ने पत्र लिखा मन को, और इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर, मन और बुद्धि, तुम दोनों ने मिलकर मुझे भटका दिया। मैं भी भटकता रहा, मेरे शांति सारी तुमने छीन ली। लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपने स्वमान में, स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ। अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। तो बाबा ने ये ऑर्डर किया। हम भी अपने से पूछे कि जब भी हम योग में बैठते हैं, या कभी भी विचार सागर मंथन होता है, या जब मन को समय मिलता है, तो मन अपनी इच्छा से चला तो नहीं जाता है? अधिकतर में से हमका उत्तर होगा हाँ, हमेशा ही ऐसा हो कि मन हमारे कहने पर चले, ऐसा नहीं। उसके लिए जो बाबा ने किया वो हम करेंगे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन जीते जगत जीत हो जाएगी। क्या किया बाबा ने? तो ये हम भी चाहते हैं मन हमारे कहने पर चले, लेकिन हम अपने सीट पर स्थित होकर मन को ऑर्डर नहीं करते। नॉर्मल केस में भी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यहाँ तक प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी बड़े से बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो, लेकिन जब तक अपनी सीट पर होता है तब उसका सब ऑर्डर मानते हैं। लेकिन वो रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया तो कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानते, क्योंकि सीट पर नहीं है। ऐसे ही जब हम स्वमान की सीट पर स्थित हुए बिना ही मन को ऑर्डर करते हैं तो मन हमारी बात नहीं मानता। हम चाहते हैं समय पड़ने पर हमें में समाने की शक्ति आए, सहन शक्ति आ जाए, समेटने की शक्ति आ जाए, कोई पर्टिकुलर गुण आ जाए, लेकिन हमारे चाहने पर भी कई बार वो हमारी आज्ञा नहीं मानते, नहीं आते। तो इसलिए पहले हम अपने समान की सीट पर स्थित होके तब मन को ऑर्डर करें। और बाबा ने कितने समान हमें दिए हैं। और वर्तमान समय मन जो है ये चैतन्य हमारी शक्ति का नाम है। चेतन स्थिति में जब होता है उसे साधारणतः मन कह देते हैं, लेकिन उससे भी शक्तिशाली कौन है? सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। डॉक्टर भी, मेडिकल साइंटिस्ट भी कहते हैं ये कई कई सौ गुना अर्धचेतन मन जो है वो चैतन्य मन से ज्यादा शक्तिशाली, जिसे हम लोग कई बार अपनी भाषा में वृत्ति भी कह देते हैं, बहुत बहुत वो शक्तिशाली है। और इस कारण से जब हमारी कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, अचेतन मन में घुस जाती है, तो वो वृत्ति जब शक्तिशाली हो जाती है तो ये फिर बाहर का मन भी ना कुछ नहीं कर सकता, उसे हमारे हुक्म पर चलना ही पड़े। तो उसको हमें शक्तिशाली करना है। और ये इसके लिए हम अपने को ये करते चले स्वमान की ओ बाबा, जो बाबा पिछले कई दिन से बात कह रहे हैं कैसे अपने से बातें करो, बस वही स्वमान में स्थित होने का साधन है। बाबा आप तो वही हो ना, हमारे कल्प पहले वाले बाबा। बाबा आपने ही मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप मुझे विजयी बना रहे हो, कल्प कल्प आप मुझे विजयी बनाते रहेंगे। मैं वही आपकी कल्प पहले वाली आत्मा हूँ बाबा, बस मैं आपकी मस्तक मणि हूँ, मैं आपकी दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, हम आपके नैनों के नूर हैं बाबा। बाबा बस जितने बाबा ने सुमान दिए हैं उनको हम अगर रिपीट करते चलेंगे वो धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसते चले जाएंगे। और इसका प्रमाण क्या है कि सपन में भी, संकल्प में भी, और ऐसी स्थिति में भी वो चीज हमारे अंदर दृश्य बनकर आती रहेगी। और जितना जितना, और सबकॉन्शियस माइंड में ये विशेषता होती है, हम कोई उसमें ये न चाहना न रखें, बल्कि हम ये करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं विजयी बन जाऊं, कमजोरी खत्म हो जाए, ऐसे नहीं। मैं विजयी आत्मा हूं, कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूं, मैं चक्रवर्ती महाराजा हूं, जो बाबा कहता है, ऐसे अपने अंदर ऐसे महान संकल्प लाते रहो। तो ये बाबा ने जब करा और उसका प्रमाण क्या है, कोई भी चीज का अगर प्रमाण होता है तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि होती है। लेकिन कोई चीज का अगर प्रमाण नहीं, मानो हमारी तबीयत खराब है, बुखार है, हम थर्मोमीटर से देख लेते हैं, पता चल जाता है ये बुखार है, दवाई लेते हैं ठीक हो जाता है, मानो शरीर में बेचैनी है, ब्लड प्रेशर नापा वो कुछ ऊपर नीचे है, पता चल जाता है नॉर्मल नहीं है, दवाई लेने पर ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन हमारे वश में या ज्ञान की जो जो बातें हैं उनको अपने ऊपर मापदंड के द्वारा चेक करते चलेंगे तो हमें पता चलेगा हम सही दिशा में और सही स्पीड से जा रहे हैं। नहीं तो हम सोचेंगे हाँ हम अमृत वेले योग भी करते हैं, सारा दिन मुरली भी सुना, ज्ञान का मनन चिंतन करा, सेवा भी की, लेकिन जो बाबा हमसे चाहता है, जो दशा, जो हमारी दिशा, जो स्पीड, अगर वैसी नहीं है तो भी हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे समय पर जो बाबा हमें चाहता है। इसलिए इसको चेक करते चले, और वो चेक करने का साधन और क्या क्या है उस पर हम सब लोग आपस में एक विचार करते चलते हैं। तो एक तो ये बाबा ने करा मन को ये ऑर्डर दिया, और इसका प्रमाण क्या कि बस बाबा का मन इतना ऐसा हो गया था। तो शुरू में जब हम 62-63 में बाबा से मिलते थे, आते थे, बाबा समाचार पूछता था, बताता था, एक एक बच्चे को 15-20 मिनट भी मिलते थे, और बस उसके बाद फिर एक जाता था दूसरा बाबा के संपर्क में, जैसे आते थे पहले तो बाबा ऐसे हाथ फैला के आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे आओ, और बस हम चुंबक की तरह खींचते हुए चले आते थे। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बाबा ने अपने मन को और आत्मिक स्थिति में इतना स्थित हो गया था, उसका प्रमाण क्या कि जैसे ही बाबा दृष्टि देता था ना, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, देह का भान ही नहीं रहता था। फिर बाबा ऐसे थपथपाते, हाँ बच्चे आओ आओ, जैसे बाबा नीचे बुलाते, और उसके बाद देह में जैसे आते थे, बाबा टोली खिलाता था, बाबा हलचल पूछता था, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, ऐसे होता था। लेकिन जब बहुत बाबा बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी, डॉक्टरों ने वगैरह ने बोला भाई सब इतने एकदम निकट आएंगे और इतने सारे, रोज बाबा बहुत बच्चों से मिलते थे, जो भी बच्चे आते थे तो इससे इन्फेक्शन होने का वो है, तो बाबा बस दूर से भी मिलता था, लेकिन वही दृष्टि दी एकदम, कोई साक्षात्कार नहीं, ध्यान में नहीं उड़ते थे, लेकिन अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा की अशरीरी स्थिति होती थी। और ऐसे धीरे धीरे फिर देखा जब 65-66 हुआ, 1966 वगैरह, तो बाबा बस हम लोग बाबा के पास जाते थे, बाबा 2 मिनट में सुन के थोड़ा सा, हाँ बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, ये बताना चाहते हो ना, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा, तो बाबा 2-4-5 मिनट देता था बस, ज्यादा नहीं है। लेकिन लास्ट में हमने क्या देखा, 17 जनवरी को, उस समय ज्यादा पार्टी तो थी नहीं, बाबा के सामने हम लोग कुछ लोग ही थे, हमें बाबा से उन 2 दिनों में लगभग 6-7 बार मिलने का सौभाग्य मिला। बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा दृष्टि दिए, और दृष्टि देते ही, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा, मतलब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बस बाबा मन का भाव समझ जाता था। यह है मन जीते जगत जीत का लक्षण। बाद में हमने एक बार बड़ी दीदी मनमोहनी दीदी से पूछा, बाब ये कैसे होता है दीदी? तो दीदी ने बताया बहुत अच्छा कि देखो जब आत्मा की अपने मन के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय हो जाती है, तो जैसे पानी होता है ना, पानी में अपनी परछाई देखो स्पष्ट दिखाई देती है, अगर पानी स्थिर है, एक छोटा सा कंकड़ भी फेंक दो लहरें पैदा होंगी, अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही मन में भी अगर कोई भी संकल्प की लहरें होंगी ना, हम दूसरे के संकल्प को नहीं पढ़ सकते, उसमें हमारे संकल्प मिक्स हो जाएंगे, और जब दूसरे के संकल्प को ही नहीं जान सकेंगे, उनके संकल्पों को हम कैसे पूरा कर सकेंगे, कैसे हम उनके इष्ट देव इष्ट देवी बनेंगे। भक्ति में तो गायन है, बस भगवान के सम्मुख भक्त जाता था, भगवान की तपस्या करता था, भगवान दर्शन देते थे, मन भक्त के मन में जो भी बात होती थी भक्त कहता था और भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस एक ही अक्षर तथास्तु, अंतर ध्यान। तो वो स्थिति बाबा हमसे चाहता है और वो हमने प्रत्यक्ष देखी अंतिम दो दिन में। और ये मन जीते जगत जीत की एक अक्षर बोले बिना भी, चाहे सेवा का संकल्प था, चाहे स्व उन्नति का, चाहे बाहर दूसरी सेवा का, कोई भी 6-7 बार ये अनुभव किया। तो ये मन जीते जगत जीत का एक तो ये हुआ। और साथ साथ क्या देखा बाबा का कि जब ये ऐसी स्थिति होती, और बाबा ने बताया है कि अभी संकल्प क्यों चलते हैं व्यर्थ, न चाहते भी कोई भी चीज हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है ना, तो हमारे मन के संकल्प चलने लगते हैं कोई भी बात। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, उस पर हम चलते रहे कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। और वो क्या है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सिद्धांत ऐसा है, इस पर हम जितना चलेंगे बस, नहीं तो होता क्या, हम दूसरों को अपनी इच्छा से जब चलाना चाहते हैं, चाहे परिवार लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे कार्यालय ऑफिस हो बिजनेस हो, तो उससे क्या होता है, और सारे दुनिया तो हमारी इच्छा से चलेगी नहीं, इस कारण से कई व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो एक इस सिद्धांत पर भी हम अपने जीवन में चलते रहे। और बाबा का क्या देखा, कितनी बड़ी बड़ी पूरे यज्ञ की संभाल बाबा करते थे, लेकिन कई बार क्या होता था, बाबा कई बात बोलते थे और वो नहीं भी होती थी, तो बाबा कहते थे शायद अजन समय अभी नहीं आया है, अभी समय पड़ा है, आने में देरी है, इसलिए ऐसा होगा। तो इस रीति से ये हमारे अंदर एक ये रहे कि अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध भी कोई काम होता है ना, उस समय हम क्या हो जाएं, साक्षी दृष्टा। बाबा इतनी बड़ी उस पर था सारा यज्ञ का कारोबार, लेकिन कितनी बातें ऐसी होती थी यज्ञ में, क्या ऊपर नीचे नहीं होता होगा, बहुत कुछ होता था, हमने तो बहुत देखा साकार के समय 7-8 साल में, लेकिन बाबा की स्थिति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे अजन इस चीज का अभी समय नहीं आया है, आएगा और बस हो जाएगा। तो कैसे साक्षी दृष्टा, बिल्कुल कहना तो बड़ा इजी है, लेकिन इसमें देखो एक चीज होती है, मतलब दृष्टि, ये आंख ये दृष्टि है, दृष्टि देखने, दृष्टि के द्वारा जो देखती है क्या देखती है, आत्मा दृष्टा है। बाहर जो देखते हैं हम वो सब है दृश्य, और इस कारण से ये दृश्य वगैरह जो देखते रहें, लेकिन देखने वाली जो दृष्टा है वो जितना दृष्टि से डिटैच होगी, हम साक्षी दृष्टा होते चले जाएंगे। हम जो भी चीज देखते हैं उसका प्रभाव जब मन पर जाता है, तो इस कारण से हम डिटैच नहीं हो पाते। तो एक उससे डिटैचमेंट, जितना डिटैच होते चले जाएंगे, बाहर की गर्मी से आ रहे हैं, बहुत तेज गर्मी है, लेकिन एसी में आए बस बहुत शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि बाहर का वातावरण अंदर के वातावरण से अलग है, डिटैच है, और जितना डिटैच होगा उतना वो सुख शांति का अनुभव कराएगा। ऐसे ही दृष्टा और दृष्टि ये एक दूसरे से डिटैच्ड हो जाए। तो बाबा का ये देखा, साकार बाबा का, और ये तब होगा जब हमारी अंदर की स्थिति जो है वो इतनी शक्तिशाली हो, जो बाबा ने कहा है बाहर की परिस्थिति को बदल दे। अभी क्या है, बाहर की परिस्थितियां शक्तिशाली हैं, हमारी स्थिति को बदल देती हैं। मानो शमशान घाट में गए, बाहर की परिस्थितियां बड़ी मसानी वैराग वाली है, हमें भी मसानी वैराग, बाहर की शक्तिशाली है उसने हमारी स्थिति पर प्रभाव डाला। बाहर का कोई एंटरटेनमेंट है, क्लब है, और वो है, हमारी स्थिति वैसी हो जाती है। बाहर की स्थिति का हम पर प्रभाव होता है, लेकिन बाबा क्या चाहता है, मन जीते, मन मने जीते, मन तो अंदर की चीज है ना, तो हम जगत जीत तब बनेंगे जब हमारी अंदर की स्थिति शक्तिशाली हो। कैसे होगी ये तो इवन साधारण वैज्ञानिक भी इस बात को प्रूव कर रहे हैं। आप सबने भी सुना होगा, हाँ, वो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, एक विशेष करके जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर एमोटो हो करके गए हैं। बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, क्या किया, दो गिलास में पानी लिया, ऑर्डिनरी पानी, एक गिलास के ऊपर बड़े अच्छे शब्द लिखे जैसे थैंक यू, आई लव यू, मदर टेरेसा, यानी बहुत अच्छी सॉफ्ट आत्मा है मदर टेरेसा, स्पिरिचुअल, ऐसे ऐसे शब्द लिखे और उस पर बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए कि हे जल, आप ही तो जीवन हो, आपके द्वारा सारा संसार चलता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप न हो तो ये संसार में जीवन ही न रहे, आदि आदि बड़े सॉफ्ट। और दूसरे गिलास में वही पानी लिया हुआ था और उसमें पूरा नेगेटिव, हिटलर शब्द लिख के चिपका दिया, आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूँ, ये कर दे लगा के, और बिल्कुल नेगेटिव शब्द, और उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दिया, ये जल हाँ आप तो विनाशकारी हो, कितने फ्लड के रूप में, सुनामी के रूप में कितना विनाश करते हो, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन, कुछ नहीं, न जल में कुछ मिलाया केमिकल, दूर रखा हुआ, बस हमारे थॉट्स का असर। फिर उन जल को क्रिस्टलाइज किया गया तो दोनों के क्रिस्टल में जमीन आसमान का अंतर था, जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए गए थे बड़े अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट शेप के क्रिस्टल बने, देखते ही बहुत प्लीजेंट अच्छा लगे, और जिन्हें नेगेटिव वाइब्रेशन दिए गए वो बड़े इररेगुलर शेप के क्रिस्टल बने। कई प्रकार के ये एक्सपेरिमेंट किए गए। तो देखो, जब हमारे मन के विचारों का बाहर रखे पानी पर इतना असर हो सकता है, तो हमारा शरीर तो 70% से ज्यादा पानी का ही बना है, अंदर पानी ही है, तो जो 24 घंटे पानी हमारे साथ रहता है उस पर हमारे विचारों का कितना प्रभाव पड़ता होगा। और देखा गया है, और डॉक्टर भी अभी तो ये कहते हैं विश्व भर के डॉक्टर कि 80% से अधिक बीमारियां साइकोसोमेटिक इफेक्ट मन के विचारों के कारण होती है। तो इस कारण से, मन के विचारों के कारण, तो हम अपने मन के विचारों, ये बाबा तो देखो इतने 75 साल से कहते आ रहे हैं, बच्चे पॉजिटिव चिंतन, दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, सारी की सारी जो हमसे बिल्कुल अगेंस्ट भी है तो भी हम उससे मित्रवत व्यवहार करें, इतना पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहेगी तो हमारा शरीर भी निरोगी रहे। बाबा को हमने देखा 93 ईयर्स की आयु, हाँ, कोई आंख पर चश्मा नहीं, कोई हाथ में लाठी नहीं, बाबा घुमाने के लिए ले भी जाते थे तो हम लोग तो तब बहुत यंग थे, 20-21 साल के, बाबा चलते थे हमें दौड़ना पड़ता था इतनी आयु में भी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिविटी का ही कमाल था। और यही देखो आज दादी जानकी जी का भी देखते हैं, इतनी 96-97 वर्ष की आयु, हमारी बड़ी बड़ी दादियां इतनी सब 80s में है। तो ये विचारों का विज्ञान ने भी ये प्रूफ किया है, और बाबा ने कई बार कहा है जब विज्ञान साइंस हमारी बात को दुनिया के सामने रख करके प्रूफ करेगा तो दुनिया उस बात को सहज मान लेगी। ऐसे ही हम तो पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं, हमारा यज्ञ, हमारा ज्ञान कि योग के द्वारा कैसे विकर्म विनाश होते हैं, योग के द्वारा निरोगी काया मिलती है आदि। लेकिन अभी जैसे हमारे प्रयोग है कैड का है, हाँ, डॉक्टर सतीश गुप्ता का, कि जनरल जो मेडिसिन के साथ मेडिटेशन भी और योग की रेस को डाइवर्ट किया जाए, अगर अफेक्टेड पार्ट के ऊपर हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उस पर योग की वाइब्रेशन को अगर डाइवर्ट किया जाता है तो उससे वो ठीक है। तो योग और क्या है, मन को सही दिशा में निर्देशन देना, वही तो योग है। तो इस कारण से क्या होता है, एक तो पानी के ऊपर प्रयोग तत्व का देखा, और ये पृथ्वी है, जैसे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स, ऐसे ही आपने पृथ्वी का भी रूरल डेवलपमेंट का जो है ना, यौगिक खेती में किस प्रकार से फर्क होता है, या तो हर वर्ष वो लोग लाते हैं जो यौगिक खेती और नॉर्मल खेती के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी टमाटर लाते हैं, कभी उसका लौकी का, कभी ये, बहुत फर्क। और उसमें सबसे बड़ी बात ये, उसका चार्ट बना हुआ है साइंटिस्ट का कि कैसे प्रोटीन वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, विटामिन वैल्यू बढ़ जाती है, और जो कम होनी चाहिए फैट वैल्यू वगैरह, वो यौगिक उसमें कम हो जाती है खेती। खैर, ये सारा मन का ही प्रभाव है कि पृथ्वी के ऊपर, जल के ऊपर, ये तत्व के ऊपर, एक एक तत्व पर भी कैसा फर्क पड़ता है। एक बाबा का ये देखा कि शुरू से ही बाबा ना, ये प्रकृति का ये तत्व का तो बना हुआ शरीर है हमारा, और बाबा ने ये बोला है अभी बच्चों के सामने, जब कोई पेपर आता है तो मन के संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ भी चल जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वैसे तो पेपर बाबा ने बहुत बताया है हम बच्चों को, भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, जल होगा पीने लायक नहीं होगा, जैसे अभी उत्तराखंड में भी देखा ना, इतना बाढ़ी बाढ़, पानी पानी, लेकिन पीने का पानी बिल्कुल नहीं, और ऐसे भोजन होगा खाने लायक नहीं होगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी, यही जीवन की आवश्यक वस्तु है। ये है पांच विकारों का पेपर, पुराने संस्कारों का पेपर, प्रकृति के पांच तत्वों का पेपर, भटकती हुई आत्माओं का, जब समूह मृत्यु और एकाएक मृत्यु होगी तो काफी आत्माएं ऐसे होंगी जिन्हें शरीर नहीं होगा, गर्भ में तुरंत तैयार मिलेगा, वो आत्माएं कुछ समय तक भटकती, तो उन आत्माओं का भी पेपर। और ऐसी आत्माएं जो होती हैं, अपनी अतृप्त इच्छाओं को दूसरों के माध्यम के द्वारा पूरा करती है, क्योंकि बहुत एकाएक अपनी अतृप्त इच्छाएं लेकर गई हैं। और ये आत्माएं कहां, अधिकतर लौकिक में भी बोलते हैं कहां निवास करती हैं, जो गंदी जगह होती हैं, अशुद्ध जगह होती है, शमशान व घाट वगैरह आदि आदि। तो अशुद्धता, हमारे भी अगर ना शारीरिक शुद्धि भी चाहिए, मन की भी शुद्धि चाहिए, जिससे कोई भी अशुद्ध आत्मा का वार हम पे ना हो सके।